नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, चीपर बाय द डजन फ्रैंक बी। गिलब्रेथ जूनियर और अर्नेस्टीन गिलब्रेथ कैरी द्वारा लिखा गया 1948 का अर्ध आत्मकथात्मक संस्मरण है। यह किसी काल्पनिक आधुनिक पारिवारिक कॉमेडी का स्रोत मात्र नहीं, बल्कि 20वीं सदी के आरंभिक अमेरिका में गिलब्रेथ परिवार के वास्तविक जीवन का सजीव चित्र है। लेखक स्वयं फ्रैंक बंकर गिलब्रेथ सीनियर और लिलियन मोलर गिलब्रेथ की 12 संतानों में से थे। पिता अग्रणी समय और गति अध्ययन विशेषज्ञ थे, जबकि माँ भी औद्योगिक इंजीनियरिंग और मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण काम करने वाली पेशेवर थीं। पुस्तक का केंद्र यह असामान्य प्रयोग है कि कारखानों की कार्यकुशलता संबंधी विधियों को घर, शिक्षा और बच्चों की दिनचर्या में कैसे उतारा गया। इसकी संरचनाएं एक सीधी कथा के बजाय छोटे, हास्यपूर्ण और स्नेह से भरे प्रसंगों की श्रृंखला है। हंसी के बीच पुस्तक अनुशासन, सीखने, पारिवारिक सहयोग और अचानक आए शोक को भी संवेदनशीलता से देखती है। इसका उद्देश्य किसी पालन पोषण सूत्र को थोपना नहीं, बल्कि एक विलक्षण परिवार की स्मृति के माध्यम से उसके समय, विचारों और रिश्तों को दर्ज करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले घर को कार्यकुशल बनाने का प्रयोग और उसकी मानवीय सीमाएं। पुस्तक की सबसे विशिष्ट बात यह है कि फ्रैंक गिलब्रेथ सीनियर अपने पेशेवर समय और गति अध्ययन को घरेलू जीवन से अलग नहीं मानते। कारखानों में उनका उद्देश्य अनावश्यक हरकतों को घटाकर काम को अधिक सुव्यवस्थित बनाना था। घर में यही दृष्टि बच्चों को बुलाने, काम बांटने, तैयार होने और सामूहिक दिनचर्या चलाने में दिखाई देती है। 12 बच्चों वाले परिवार में यह केवल सनक नहीं थी, बल्कि सीमित समय, जगह और माता पिता के ध्यान को व्यवस्थित करने का एक व्यावहारिक प्रयास भी था। संस्मरण इस विचार को हास्य के साथ प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे पिता की योजनाओं के निष्क्रिय हिस्से नहीं है। वे उनकी विचित्रताओं को देखते, उन पर प्रतिक्रिया देते और कभी कभी उन्हें उलझा भी देते हैं। यही प्रतिरोध पुस्तक को किसी दक्षता प्रचार ग्रंथ में बदलने से रोकता है। घर उत्पादन की इकाई नहीं होता, क्योंकि उसमें भावनाएं, उम्र के अंतर, शर्मिंदगी और निजी इच्छाएं भी होती हैं। गिलब्रेथ परिवार की व्यवस्था तब रोचक बनती है जब वह सहयोग और सीखने को आसान करती है, और तब तनावपूर्ण जब नियंत्रण अधिक कठोर लगता है। इसलिए पुस्तक दक्षता को अपने आप में अंतिम मूल्य नहीं मानती। वह दिखाती है कि साधनों की बचत का अर्थ तभी है जब बचा हुआ समय परिवार, जिज्ञासा और साझा अनुभवों के लिए उपलब्ध हो। दूसरा, समय और गति अध्ययन से बच्चों की शिक्षा को खेल में बदलना। गिलब्रेथ दंपति के लिए शिक्षा कक्षा तक सीमित प्रक्रिया नहीं थी। पिता बच्चों को रोजमर्रा की स्थितियों में मानसिक गणना, संकेतों और तेजी से सीखने की आदतों से परिचित कराते हैं। मोर्स कोड का उपयोग खास तौर पर यादगार है, क्योंकि वह अभ्यास को दंड या बोझ बनाने के बजाय घर के भीतर संकेत, संदेश और खेल का रूप देता है। यह तरीका परिवार की बौद्धिक संस्कृति को स्पष्ट करता है। बच्चों से कम अपेक्षा नहीं रखी जाती, पर सीखने को जीवंत और प्रतिस्पर्धी भी बनाया जाता है। पुस्तक यह भी बताती है कि शिक्षण की प्रभावशीलता केवल पाठ्य सामग्री में नहीं, उसके संदर्भ में होती है। जब कोई कौशल खोज, मजाक या सामूहिक गतिविधि से जुड़ता है, तो वह अधिक याद रह सकता है। फिर भी संस्मरण इस व्यवस्था को आदर्श विद्यालय मॉडल के रूप में पेश नहीं करता। पिता की तीव्र महत्वाकांक्षा और बच्चों को आगे बढ़ाने की इच्छा कभी दबाव का रूप भी ले सकती है। आधुनिक पाठक यहाँ से उपयोगी सिद्धांत ले सकते हैं, जैसे सीखने को दैनिक जीवन से जोड़ना और बच्चों की क्षमताओं को गंभीरता से लेना। लेकिन उम्र, रुचि और स्वायत्तता का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। इस संतुलन के कारण पुस्तक शिक्षा पर अप्रत्यक्ष लेकिन ठोस टिप्पणी बन जाती है। तीसरा, फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ की साझेदारी का ऐतिहासिक महत्व। लोकप्रिय स्मृति में चीपर बाय द डजन अक्सर एक रंगीले, आदेश देने वाले और चुटकुलेबाज पिता की पुस्तक समझी जाती है, लेकिन इसके पीछे फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ की पेशेवर साझेदारी को देखना जरूरी है। दोनों औद्योगिक कार्य पद्धतियों और मानव व्यवहार के अध्ययन से जुड़े थे, और परिवार की अनेक शैक्षिक तथा संगठनात्मक प्रवृत्तियां इस साझा दृष्टि से निकलती हैं। लिलियन का योगदान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस दौर में एक महिला का इंजीनियरिंग और मनोविज्ञान में पेशेवर पहचान बनाना असाधारण था। संस्मरण का घरेलू दृष्टिकोण कई बार पिता को अधिक मंच देता है, फिर भी माँ को केवल सहनशील गृहिणी मानना गलत होगा। परिवार के भावनात्मक संतुलन, बच्चों की देखभाल और साझा कामकाजी जीवन में उनकी भूमिका आधारभूत है। यह परत पुस्तक को अमेरिकी औद्योगिक इतिहास और महिलाओं के पेशेवर इतिहास से जोड़ती है। साथ ही यह दिखाती है कि दक्षता केवल मशीनों या उत्पादन की बात नहीं थी, बल्कि काम करने वाले मनुष्यों की थकान, आदतों और जरूरतों को समझने का प्रयास भी थी। आज के पाठक को इस परिवार में बराबरी का पूर्ण आधुनिक मॉडल नहीं मिलेगा, क्योंकि समय के लैंगिक मानदंड स्पष्ट हैं। फिर भी लिलियन की वास्तविक बौद्धिक और व्यावसायिक उपस्थिति पुस्तक के ऐतिहासिक अर्थ को गहरा करती है। चौथा, 12 बच्चों के बीच सहयोग, निजी पहचान और सामूहिक हास्य। बड़ी पारिवारिक संख्या पुस्तक में केवल आकर्षक आंकड़ा नहीं है,
12 बच्चों का घर अपने आप में एक सामाजिक व्यवस्था बन जाता है, जहां संसाधन साझा होते हैं, निजता सीमित होती है और हर व्यक्ति को समूह में अपनी जगह बनानी पड़ती है। गिलब्रेथ भाई बहनों के प्रसंग बताते हैं कि सहयोग अक्सर किसी औपचारिक उपदेश से नहीं, बल्कि रोज की आवश्यकता से पैदा होता है। एक साथ भोजन, यात्राएं, पढ़ाई, शरारतें और माता पिता के नियमों का सामना करना उन्हें परस्पर निर्भर बनाता है। हास्य यहाँ महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाता है। पिता की असाधारण पद्धतियां और परिवार की भीतरी भाषा ऐसी घटनाएं बनाती हैं जिन पर बच्चे मिलकर हंस सकते हैं। इससे अनुशासन का दबाव पूरी तरह कठोर वातावरण में नहीं बदलता। दूसरी ओर पुस्तक यह भी संकेत देती है कि इतने बड़े समूह में व्यक्तिगत पसंद, किशोरावस्था की सामाजिक आकांक्षाएं और अलग पहचान की मांग जटिल हो सकती है। परिवार का प्रत्येक सदस्य समान अनुभव नहीं जीता। संस्मरण 2 भाई बहनों की दृष्टि से लिखा गया है, इसलिए यह पूर्ण निष्पक्ष सामाजिक अध्ययन नहीं है। फिर भी इसकी ताकत इसी भीतर से आई आवाज में है। यह बड़े परिवार को न तो केवल अराजकता बताता है, न केवल आदर्श समुदाय, वह उसे बातचीत, समझौते, प्रतिस्पर्धा और स्नेह से बनी जटिल इकाई के रूप में रखता है। अंत में हास्य से शोक तक संस्मरण की भावनात्मक संरचना, चीपर बाय द डजन की एपिसोडिक संरचना पहले उसे हल्के पारिवारिक किस्सों का संग्रह प्रतीत कराती है। पाठक अलग अलग घटनाओं में पिता की ऊर्जा, बच्चों की प्रतिक्रियाएं और घरेलू अव्यवस्था का आनंद लेता है, किंतु यही ढांचा अंत की भावनात्मक शक्ति बढ़ाता है। फ्रैंक गिलब्रेथ सीनियर की अचानक मृत्यु के बाद पहले के प्रसंग केवल मजेदार यादें नहीं रहते, बल्कि अनुपस्थिति से प्रकाशित पारिवारिक इतिहास बन जाते हैं। पुस्तक शोक को लंबे उपदेशों या नाटकीय घोषणाओं में नहीं बदलती, इसके बजाय वह दिखाती है कि एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति के चले जाने पर परिवार की दिनचर्या, बातचीत और भविष्य की कल्पना कैसे बदलती है। यह परिवर्तन पाठक को पिता के व्यक्तित्व की सीमाओं और उदारता दोनों को अधिक जटिल ढंग से समझने देता है। वे अनुशासन प्रिय और कभी भारी पड़ने वाले व्यक्ति थे, पर बच्चों के लिए उनका स्नेह और परिवार के प्रति उनका निवेश भी वास्तविक था। इसी कारण अंत किसी सरल श्रद्धांजलि जैसा नहीं लगता। संस्मरण की भावनात्मक ईमानदारी इस बात में है कि हास्य और दुख साथ मौजूद रहते हैं। यह परिवार की दृढ़ता पर ध्यान देता है, विशेषकर उस स्थिति में जब माँ और बच्चे आगे की जिम्मेदारियों का सामना करते हैं। यही स्वर इसे केवल मनोरंजक पुरानी यादों से अधिक स्थायी साहित्यिक अनुभव बनाता है। निष्कर्ष में, चीपर बाय द डजन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिन्हें पारिवारिक संस्मरण, अमेरिकी सामाजिक इतिहास, शिक्षा के अनौपचारिक तरीके या औद्योगिक इंजीनियरिंग के मानवीय पक्ष में रुचि है। किशोर और वयस्क दोनों इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि आज के पाठकों को इसमें दिखाई देने वाले अनुशासन, वर्ग और लैंगिक भूमिकाओं को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए। बड़े परिवारों से आने वाले लोगों को इसमें साझा जीवन की अफरातफरी और सहयोग परिचित लग सकते हैं, जबकि दूसरे पाठकों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि संगठन और पारिवारिक निकटता एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। व्यावहारिक स्तर पर पुस्तक कोई तैयार प्रबंधन पद्धति नहीं देती, इसका लाभ अधिक सूक्ष्म है। यह सिखाती है कि कामों को सरल बनाना उपयोगी हो सकता है, सीखने को खेल और दैनिक अनुभव से जोड़ा जा सकता है, और सामूहिक जीवन में हास्य तनाव को कम कर सकता है। साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि हर चीज को मापने और नियंत्रित करने की इच्छा रिश्तों की जटिलता को पूरी तरह नहीं पकड़ सकती। समान पारिवारिक हास्य पुस्तकों से इसका अंतर इसकी वास्तविक ऐतिहासिक बुनियाद है। गिलब्रेथ परिवार की कहानी केवल 12 बच्चों की शरारतों पर नहीं टिकी, बल्कि समय और गति अध्ययन के आरंभिक इतिहास, 2 पेशेवर माता पिता की साझेदारी और अचानक शोक के बाद परिवार की निरंतरता से जुड़ी है। यही मिश्रण इसे हंसाने वाली, विचारोत्तेजक और भावनात्मक रूप से टिकाऊ कृति बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फ्रैंक बी गिलब्रेथ, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।